الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سورة الأنبياء کی دو آیات 5 and 6 ان کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے مارک القرآن پیج نمبر 6 سے اور پیج نمبر 219 کے اوپر تھے. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اپنے انبیاء علیہ السلام کا، وہ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا ان کے ساتھ ذکر فرمایا. تو ذوالکفل کے بارے میں جو یہ روایت ہم نے پڑھی تھی، تو اس سے علماء یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے ہی تھے. تو اس کے بعد پھر ایک اور روایت، یعنی ایک اور حدیث کی روایت مسند احمد سے حضرت نقل فرمائی تھی یہاں پر، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں، جو کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، تو اس میں ایک روایت اور بھی ہے، مگر اس میں ذوالکفل کی بجائے الکفل کا نام آیا ہے. اسی لیے ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے کہا کہ یہ کوئی دوسرا شخص کفل نامی ہے، وہ ذوالکفل جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں تو ذوالکفل کا نام ابن کثیر نے فرمایا، لیکن پھر بھی یہ جو الکفل والی یا کفل والی جو روایت ہے وہ بھی یہاں پہ نقل کر دی. وہ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ سے زائد سنی ہے. 7 مرتبہ سے زائد، یعنی کئی مرتبہ سنی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے پرہیز نہ کرتا تھا، بنی اسرائیل میں رہتا تھا، یعنی وہی جو یہودیوں کی جو نسلیں کہلاتی ہیں، تو بہت گناہگار شخص تھا. ٹھیک ہے، یعنی ایمان والا تھا لیکن گناہگار، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں نا، ان کا شمار ایمان والوں میں ہی ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے. ٹھیک ہے، ایمان والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو یہی ایمان والے تھے، یہی جو ہے وہ آسمانی کتابوں کے حامل تھے، انہی کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 10,000 سے زیادہ انبیاء بھیجے تھے، اور یہ ان انبیاء کو مان بھی لیتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، انہی کی نسل میں سے ہوتے تھے، کوئی ان کو خاص اعتراض نہیں ہوتا تھا ان کو ماننے میں، لیکن بات نہیں مانتے تھے، کو مانتے تھے لیکن کی نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ان میں بہت سے نیک پرہیزگار بھی گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، بہت سارے عابد اور مجاہد اور بہت زیادہ مجاہدے کرنے والے نیک پرہیزگار لوگ بھی گزرے ہیں. ٹھیک ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ گناہگار بھی گزرے ہیں. یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ ماننے والوں میں سے تھا لیکن کی ماننے والوں میں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی گناہگار تھا اور عمل اس کا جو تھا نا وہ بہت خراب تھا، تو کسی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا تھا. اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اس کو 60 دینار گنیاں دی، یعنی یہ ایک میجر آف گولڈ ہے، تو 60 دینار بہت بڑی رقم اس زمانے کی کے حساب سے بنتی تھی. تو 60 اشرفیاں، جس کو ہم عام بچوں کی زبان، بچوں کی کہانیوں کی کتابوں میں اشرفیاں کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، تو اس نے کفل نے اس کو 60 دینار دی اور فعل حرام پر اس کو راضی کر لیا. اور جگہوں سے جو اس حدیث کی تفصیل پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ اس کی رشتہ دار کوئی عورت تھی کہ جس کو کہ اس وقت جو ہے وہ مالی امداد کی ضرورت تھی، شاید یہ بیوہ تھی، और इसके ऊपर बहुत कठिन कठिन वक्त आ गया था, बहुत मुश्किल वक्त आ गया था, उसको पैसों की जरूरत थी और कहीं और से उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। तो ये अपने इस कजन अलकिफल के पास आई कि तुम मुझे उधार दे दो या तुम मुझे पैसे दे दो ना, जिसकी मुझे जरूरत है। तो उस वक्त ना ये चूंकि इंतहाई गुनाहगार इंसान था, और जो ऐसा शख्स होता है फासिक फाजर, तो फिर वो हर चीज के अंदर ना, हर मामले में अपना कोई दुनियावी नफा निकालने की कोशिश करता है, हर मामले में अपना कोई दुनियावी नफा। जैसे दीनदार नेक परहेजगार होता है, वो हर मामले में अपना दीनी नफा निकालने की कोशिश करता है, आखिरत का नफा निकालने की कोशिश करता है। उसी तरीके से दुनियादार हर मामले में अपना दुनियावी नफा निकालने की कोशिश करता है। तो इसने इसमें भी अपना ये फायदा ढूंढा कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, लेकिन फेले हराम के मुर्तकिब तुम मेरे साथ हो जाओ। ठीक है, तो यानी जिना का मुर्तकिब होने के लिए इसने इसको तैयार कर लिया। जब वो मुबाशरत के लिए बैठ गया तो ये औरत कांपने और रोने लगी। तो उसने कहा कि रोने की क्या बात है, इसके लिए मामूली बात थी। तो इसने कहा भाई ये तो करता रहता था, ये तो आदी था इस किस्म के शराब पीने का और मौसीकी का और जना का और इस किस्म की हरकतों का। तो वो औरत जो है वो रोना शुरू हो गई, कहने लगा रोने की क्या बात है, क्या मैंने तुम पर कोई जबर जबरदस्ती की? भाई तुम यानी मारपीट करके कोई ऐसे तो नहीं, तुमको मैंने बाकायदा एक डील करी है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा भी फायदा हो रहा है तो भाई मेरा भी फायदा होने दो। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं, तुमने जबर तो नहीं किया, लेकिन ये एक ऐसा गुनाह है जो मैंने कभी उम्र भर नहीं किया, और इस वक्त मुझे अपनी जरूरत ने मजबूर कर दिया, इसलिए इस पर आमादा हो गए। यानी मैं अपने दिल से राजी नहीं हुई हूं, बल्कि मैं मजबूरन राजी हुई, मेरे ऊपर इतने बुरे हालात आए हुए हैं। ये सुनकर वो शख्स उसी हालत में औरत से अलग होकर के खड़ा हो गया और कहा कि जाओ, ये दीनार भी तुम्हारे हैं और अब से किफल भी कोई गुना नहीं करेगा। ठीक है, यानी इसके ऊपर अल्लाह ताला का एक खौफ तारी हुआ, क्योंकि वो औरत जो थी ना, वो थी एक मुत्तकिया परहेजगार औरत। और इवन कोई मुत्तकी परहेजगार इंसान भी जो है ना, कभी इंतहाई मजबूरी की हालत में, कभी कोई बहुत ऐसे उसके ऊपर हालात आ जाते हैं कि जिस वक्त उससे भी गुनाह सरजद हो जाता है। ठीक है, तो ये औरत जो थी ना, थी अल्लाह की, अल्लाह का ध्यान रखने वाली, अल्लाह का लिहाज रखने वाली, मुत्तकी, लेकिन इंतहाई मजबूरी की वजह से इससे ये गुनाह सरजद हो रहा था। ठीक है, लेकिन दिल में तो अल्लाह ताला का खौफ इसके था, तो इसका जो दिल दिल की कैफियत थी ना, वो अलकिफल के ऊपर भी इसका असर हुआ। ठीक है, और अलकिफिल ने जो है ना, उस वक्त ना सिर्फ ये कि उस गुनाह से अपने आप को बचा लिया, बल्कि ऐसा उसका दिल पलटा कि इसने जो है वो पैसे भी इसके हवाले कर दिए और आइंदा के लिए गुनाहों से तौबा कर। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि दिल का असर जो है वो अगले बंदे के दिल के ऊपर ऐसा पड़े कि अपनी सारी जिंदगी के गुनाहों से इंसान तौबा कर, लेकिन ऐसा भी होता है। ठीक है, बहुत सारे काफिर, बड़े बड़े जो है वो शिर्क के मुर्तकिब, बड़े बड़े जो है वो गुनाहों के मुर्तकिब, नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में आते थे और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते थे और तमाम गुनाहों से तौबा कर लेते थे। लेकिन बड़े बड़े काफिर ऐसे भी थे जो कि नबी अलैहिस्सलाम की सोबत में आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी का दिल जो है वो अल्लाह ताला का के खौफ में मुब्तला नहीं हो सकता, और वो आकर के मुसलमान नहीं होते। ठीक है, तो वैसा भी होता है और ऐसा भी होता है। तो इसका असर पड़ा इस औरत की, औरत का असर पड़ा इसके ऊपर और ये तब्दील हो गया था। तो अब उसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि उसी रात में किफल का इंतकाल हो, और सुबह उसके दरवाजे पर गैब से ये तहरीर लिखी हुई देखी गई, गफर अल्लाहु लिल किफल, कि अल्लाह ताला ने जो है किफल की मग़फ़िरत कर दी, यानी अल्लाह ताला ने किफल को बख्श दिया। इब्ने कसीर ने ये रिवायत मुसनद अहमद की नकल करने के बाद कहा है कि उसको सहाय सित्ता में से किसी ने रिवायत नहीं किया है, यानी जो हदीस की मशहूर तरीन और मुस्तनद तरीन सात किताबें हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की, और सही तिर्मिजी, जामे तिर्मिजी और अबू दाऊद और मुअत्ता इमाम मालिक और सुनन नसई वगैरह। तो इन किताबों ने ना इस हदीस को जिक्र नहीं किया है, और इसनाद इसकी गरीब है। ठीक है, यानी इसकी इसनाद जो है ना, यानी इसकी जो सनद है, इसकी जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है नबी अलैहिस्सलाम से लेकर के इन किताबों के मुरतब करने वाले हजरात तक, तो वो सनद जो है ना वो इतनी ज्यादा मशहूर सनद नहीं है, इतनी मजबूती मजबूती उसके अंदर इतनी ज्यादा नहीं है। तो इसनाद उसकी गरीब है, और बहरहाल अगर रिवायत साबित भी है तो इसमें जिक्र किफल का है, जुल किफल का नहीं। यानी इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस किताब के अंदर उसको नकल किया है, लेकिन इतनी मजबूत हदीस नहीं है, सही हदीस नहीं है। तो बहरहाल अगर साबित होती भी तो इसके अंदर जो है ना वो किफल का जिक्र है, तो ये कोई दूसरा शख्स मालूम होता है, लेकिन यानी जुल्किफल जिसका के तस्करा शायद के अंदर है वो नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। खुलासा ए कलाम ये है कि जुल्किफल हजरत यसा अलैहिस्सलाम नबी के खलीफा और वली सालेह थे, उनके खास महबूब आमाल की बिना पर हो सकता है कि उनका जिक्र इस आयत में बज़ुमरा अम्बिया कर दिया गया, और इसमें कोई बोध नहीं। मालूम होता है कि शुरू में, यानी इसमें भी कोई बोध नहीं, कि मालूम होता है कि शुरू में ये हजरत यसा अलैहिस्सलाम के खलीफा ही हों, फिर हक तआला ने उनको मनसब नबूवत अता फरमा दिया हो। तो बनी इसराइल में तो ऐसा बहुत ज्यादा होता था कि शुरू में जो है ना कोई शख्स जो है वो नेक साले और आम आदमी होता था, और नबी की उम्मत के अंदर एक उम्मती के तौर पर रहता होता था, लेकिन बाद में जा करके जब उस नबी का इंतकाल होता था तो फिर इनको जो है वो नबुवत से सरफराज कर दिया जाता था। जैसे हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का तस्करा है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो था ना वो बतौर हेल्पर के, बतौर यानी उनके खादिम के जो है वो रहा करते थे, तो उस वक्त वो नबी नहीं थे, लेकिन बाद में फिर उनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का नबी बना दिया था। उसी तरह से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी यही मामला की जी बाद में, जब वो तालूत अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुसनद खिलाफ मुसनद नबूवत अता फरमा दी थी। तो इस तरह से इनके साथ भी ऐन मुमकिन है कि इनके साथ भी यही मामला हुआ हो बाद में नबूवत मिल गई। ठीक है जी। तो ये तो जुल्किफल वाली बात हो गई, लेकिन इसके अंदर हमें एक बहुत बड़ा तौबा का भी पैगाम मिलता है कि इंसान कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन जब वो अल्लाह ताला से रुजू करके अपने गुनाहों के ऊपर नादिम और शर्मिंदा हो जाता है और आइंदा ना गुनाह करने का इरादा कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला उतने बड़े बड़े गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं, जैसे कि अल-किफल के गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। आगे की आयात हम शुरू कर लेते हैं इस क्लास में फिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़न्नूनी إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين। इसका तर्जुमा पहले पढ़ेंगे, खुलासा तफसीर फिर मारूफ मसाइल। किसी ने यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज में कुछ लिखा है, वो देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा गुनाह है जो आपकी सारी नेकी खत्म कर दे। क्या कोई ऐसा गुनाह है जो आपकी सारी नेकी खत्म कर दे? हाँ, कुफर, शिर्क, नबी की शान में गुस्ताखी। ठीक है, ये ऐसे गुनाह हैं कि जिससे कि इंसान कि सारी नेकियां खत्म हो जाती हैं। बेसिकली जो है ना वो इस तरह, ये गुनाह बेसिकली क्या होते हैं, ये गुनाह होते हैं कि कुफर का मुर्तकिब हो जाना, कुफ यानी काफिर हो जाना ना। तो जब इंसान काफिर हो जाता है ना, तो अब उसके जितने की भी नेकियां हैं वो सारी के सारी फिर जीरो हो जाती हैं। अब अगर वो तौबा करके फिर से मुसलमान हो जाए तो वो फिर ना दोबारा से जीरो से शुरू करेगा फिर उसके बाद नेकियां करना। पेरेंट्स से बदतमीजी करने से क्या गुनाह होता है? हाँ, माँ बाप से बदतमीजी करना जो है ये गुनाह का काम है, लेकिन इससे इंसान काफिर नहीं होता। बदतमीजी करना इसका मतलब यानी गंदे अल्फाज, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, चीख चीख करके उनके साथ जो है वो बातचीत करना, उनको कोई वो हेयरिंग प्रॉब्लम हो तो फिर तो चीख करके बात सुनाई जा सकती है कि भाई वो कान खराब हो गए इसको, लेकिन उसके अलावा जो है वो जो बदतमीजी वाला चीखना होता है तो वो पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहा है। ठीक है, पेरेंट्स की अतात करना जो है ना वो तो शरीयत के तहत लाजमी है। ठीक है, कि पेरेंट्स अगर कोई ऐसी बात कह रहे हैं कि जो कि शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह के हुक्म के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ है, तो उसके ऊपर अमल करना जो है वो जायज नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है वो उसको भी बदतमीजी ही कहेंगे, बहुत सारे लोग उसको भी बदतमीजी ही कहेंगे कि भाई आपने उनकी बात नहीं मानी, वो आपको जो है जो भी करने को कह रहे थे आखिर को आपके माँ बाप है ना, तो आप उनकी बात मान करके फलाना गुनाह का काम कर लें, जैसे टीवी देखना, गैर महरम को देखना, पेपर दगी करना या दाढ़ी मुंडा देना। ठीक है, तो आखिर को आपके माँ बाप थे, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, आपने तो उनके साथ बदतमीजी कर दी। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना वो बदतमीजी की तारीफ में नहीं आती। ठीक है, हाँ ये और बात है कि आप उनकी बात ना माने लेकिन जुबान से उनको बुरे कलिमात ना कहें, ठीक है, और उनके सामने चीखें चिल्लाएं, उनके सामने जो है ना वो उठापटख ना करें। ठीक है, बस उनकी बात ना माने, उससे वो नाराज होंगे, उनको नाराज होने दें लेकिन बदतमीजी अपने तौर पर अपनी तरफ से ना करें। ठीक है, तो गुनाह की बात का इनकार करना जो है ये बदतमीजी नहीं। ठीक है, माशाल्लाह, इन्होंने जो है सूरह हुजरात की आयत यहाँ पर नकल फरमा दी है, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौता सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौली, ए ईमान वालों तुम अपनी आवाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के ऊपर मत ऊँचा करो। ठीक है, कजहर बादुकुम लिबाद, जैसे कि तुम एक दूसरे के साथ जो है ना वो अपनी आवाज़ों को ऊंचा करते रहते हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करने में लोग जो है वो जरा ऊंची आवाज में भी बोल देते हैं, अगले बंदे का इतना ख्याल नहीं करते, लेकिन तुम नबी अलैहिस्सलाम के सामने ऐसा ना करना, अंतहबा आमालुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आमाल को जाया कर बैठो, वह अंतुम ला तशुरून, और तुम्हें पता भी ना चले। ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी जो है ना इससे जो है वो आमाल जाया किए जा सकते हैं। अच्छा, ये जो है सूरह हुजरात की जो आयत है कि तुम अपनी आवाजों को उनकी आवाज से ऊंचा ना करो, ये तो सहाबा के बारे में है, उन सहाबा के बारे में है कि जिनकी आवाज की जो थी ना वो पिच ही ज्यादा थी। एक होती है ना आवाज की पिच, ठीक है, कि जब इंसान बोलता है ना तो उसके मुंह से जो है वो जोर की ही आवाज निकलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे दोस्तों में से एक थे जो कि हमारी बिल्डिंग के काफी आगे उनकी बिल्डिंग थी, वो वहां पे रहते थे, हम अपार्टमेंट्स में रहते थे। ठीक है, तो वो जो है ना वो उनकी आवाज हमारे घर तक आती थी, हालांकि वो नॉर्मल आवाज में बात कर रहे होते थे। तो इसी तरीके के कुछ सहाबत थे कि उनकी आवाज ऐसी थी, तो वो फिर नबी अलैहि सलाम के साथ जब बात किया करते थे तो भी उनकी आवाज जो है वो बड़ी होती थी, लेकिन उनको हुक्म दे रहे हैं कि ये भी ऐसा नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा भी ना करना। ठीक है, वो कोई नबी अलैहिस्सलाम के साथ नाउज़ुबिल्लाह कोई गंदी बात नहीं कर रहे होते थे, कोई नाफरमानी की बात नहीं कर रहे होते थे, बस सिर्फ उनकी आवाज की पिच जो थी ना वो थोड़ी ज्यादा हो जाती थी, तो अदब के बाब के अंदर इसको भी मना करते। ठीक है, जितना इल्म हम पर सीखना फर्ज है, अगर वो इससे रोकें हम नाफरमानी करके सीख सकते हैं, हम उनकी बात ना मान के सीख सकते हैं। जी, जितना इल्म आपके ऊपर सीखना फर्ज है अगर माँ बाप उसको सीखने से रोकते हैं तो फिर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना, लेकिन पता भी है कि कितना इल्म फर्ज है और कितना इल्म जो है वो नफिल है। ठीक है, इसमें अगर आप कंफर्म कर चुकी हैं कि कितना आपके ऊपर फर्ज है, तो फिर उसके बाद फिर उनकी नाफरमानी की जा सकती है इस मामले में, ठीक है ना। जैसे हैज और निफास का, पाकी का इल्म, नमाज सीखने का इल्म, और जो है वो गुनाहों से बचने का, है ना, कि क्या गुनाह है, ये भी फर्ज इल्म है कि कौन कौन से गुनाह होते हैं, ठीक है। तो इन उलूम को सीखने में माँ बाप की नाफरमानी की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये फर्ज है। लेकिन आलिमा बनना ये फर्ज नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर के आप तफसीर और हदीस और अपनी तरफ से जो है ना एक्स्ट्रा अरबी उलूम वगैरह पढ़ रहे हैं, ये फर्ज में नहीं, ठीक है ना। फर्ज इल्म जो है वो इसका मालूम कर लेना जरूरी है पहले। अच्छा, जितना 24 घंटे में हमें जरूरत लगे, क्या ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, हमें जरूरत लगे से क्या मुराद है आपकी? मुझे जरूरत लगे, मुझे जरूर लगे, नहीं, ये तो थोड़ी कि मुझे जो जो चीज फर्ज लगे तो वो फर्ज हो जाती है, नहीं, ये तो उलमा बताएंगे ना कि कौन सा इल्म आपके लिए फर्ज है, कौन सा इल्म आपके लिए फर्ज नहीं है, ठीक है ना। ये खाली ऐसा नहीं कि मुझे इसकी जरूरत महसूस हो रही है, इस वजह से वो फर्ज है। खुद से अगर फैसले करने होते तो फिर भाई ना तो मौलवी साहब की जरूरत थी, ना आलम की जरूरत थी, और ना नबी की जरूरत थी, ठीक है ना। नबी ने तो नबी इसीलिए तो आए हैं कि फर्ज क्या है और फर्ज क्या नहीं है ये बताने के लिए, तो सीखना पड़ता है ये इस बात को कि क्या फर्ज है क्या फर्ज नहीं है। अच्छा, आगे चले। इसका तर्जुमा फरमाते हैं कि वजन नून इज ज़हब मुगावबन, और मछली वाले को याद कीजिए, मछली वाले के तस्करे को, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान मजीद नाजिल हो रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो है वो अपने अंबिया, पिछले गुजरे हुए अंबिया का जिक्र फरमा रहे हैं और उनको बता रहे हैं, तो मछली वाले के तस्करे को याद कीजिए। इस जहाबा, जब वो चला गया मुगाज़िबन, ठीक है, गुस्से की हालत में, गजब, गजब की हालत, ठीक है, गजब और गुस्सा ये दोनों लफ्ज जो है वो इंटरचेंजबली इस्तेमाल होते हैं। फ़ज़न्ना, बस उसने गुमान किया, बस उसने समझ लिया, अल्लन नक़दिर अलैही, कि हम उसके ऊपर कुदरत नहीं रखते, हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे, ठीक है ना। बड़ा शाहाना अंदाज है खिताब का ये, ठीक है, कि नबी ने गुमान कर लिया कि अल्लाह ताला उसको नहीं पकड़ सकेंगे, उफ अल्लाह, नबी ने ऐसा गुमान कर लिया, नहीं, नबी ने ऐसा गुमान नहीं किया, बल्कि ये एक शाहाना खिताब कहलाएगा अपने एक मुकर्रब बंदे के लिए, ठीक है, कि उन्होंने ये क्या ये समझ लिया था कि हम उनको नहीं पकड़ सकें। फनादा फिल गुलुमात फनादा फिल गुलुमाती, बस उसने निदा दी अंधेरों में से, गुलुमात जुल्म की जमा, जुल्म का मतलब होता है, एक तर्जुमा जुल्म का बनता है अंधेरा, ठीक है ना, और एक तर्जुमा गुनाह बनता है, और इन दोनों को आपस में आप जोड़ भी सकते हैं कि हर गुनाह जो है वो एक अंधेरा है, ठीक है, क्योंकि उसका अंजाम अंधेरा है, जहन्नुम का, तो इस वजह से हर गुनाह जो है वो अंधेरा है। लेकिन यहाँ पर जुलुमात का जो लफ्ज है ना, ये दुनिया के फिजिकल अंधेरे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो उन्होंने दुनिया के इस फिजिकल अंधेरे में से, जिसके अंदर के उनको बंद कर दिया गया था, वहां से उन्होंने निदा दी, उन्होंने पुकारा, नादा उसने पुकारा, अन के ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई माबूद सिवाय आपके, ठीक है। इलाह का जो लफ्ज है ये माबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माबूद जिसकी इबादत की जाए, तो ये सारे झूठे माबूदों की नफी कर रहे हैं, ला इलाहा नफी, ला नफी जिन्स, जिन्स की नफी कर रहे हैं, हर किस्म की जो इलाह है ना उसकी नफी, ला इलाहा इल्ला सिवाय आपके, अंता ए अल्लाह, ठीक है, सुभान का पाक हैं आप, पाक हैं आप, बहुत साफ सुथरे हैं, मैल कुचैल नहीं है आपके ऊपर, हमारे यहाँ पाकी की यही डेफिनेशन होती है आमतौर पर, नहीं, पाक हैं आपका मतलब हर नुक्स से पाक है, क्योंकि नुक्स जो है ना वो नापाकी होती है, नुक्स बुराई कमी गलती कोताही भूल, ये सारे के सारे जो है ना ये नुक्स हैं, ये सारे के सारे नापाकियां हैं, ठीक
है ना, आप इन सारे नुक्से पाक है, ठीक है ना, आप गलतियां नहीं करते, आप भूलते नहीं हैं, आपके इल्म के अंदर कोई कमी नहीं है, राइट, आपकी कुदरत के अंदर कोई कमी नहीं है, आपके फैसलों के अंदर कोई ज्यादती नहीं है, है कि आप ज्यादती कर जाते हैं किसी के साथ अपने फैसले के मामले में, है ना, अनडिजर्विंगली किसी को जो है वो दे दे दो, नहीं जिस किसी से रोक लेते हैं, जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं देते, ठीक है, जो डिजर्व करता था किसी चीज का उससे आप जुल्म कर जाते हैं ना उस, ठीक है, नहीं, ऐसी कोई भी खराबी आपके साथ नहीं है। अंत सुबहानक, ठीक है, इन्नी कुंतु मिनज ज़ालिमीन, बेशक मैं ही हूं जुल्म करने वालों में से। अब यहां पर जुल्म का जो लफ्ज है ज़ालिमीन, यहां पर ये नहीं मैं ही हूं अंधेरा फैलाने वालों में से, जहां कहीं मुझे बिजली का बल्ब नजर आता है मैं बिजली का बल्ब तोड़ देता हूं अंधेरा फैल जाता है, कोई शमा जली हुई होती है मैं शमा को जो है वो फूंक मार के गुल कर देता हूं तो अंधेरा फैल जाता है, तो मैं ज़ालिमीन यानी अंधेरा फैलाने वाला हूं, नहीं। इसी आयत के अंदर अब दूसरा जो इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज जुल्म का, ये जुल्म अल्लाह की नाफरमानी का काम करना, ठीक है ना, गुनाह का काम करना, बेशक मैं ही हूं गुनाहकार, मैं ही हूं खताकार, ठीक है, ये है वो वाली आयत जिससे कि आयत करीमा का विर्द मिल गया है ना, जो कि फिर हम 1.25 लाख और 3 लाख और 50 लाख और करते चले जाते हैं, लेकिन मानी समझ में नहीं आते कि है क्या इसका मतलब, क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। तो अगर एक दफा भी पढ़ लेना आयत करीमा और मान लें कि इसका क्या मतलब है, समझ लें और इसको समझ करके अल्लाह ताला से वाकई माफी मांग लें अपने गुनाहों के ऊपर ना, तो 1.25 लाख से ज्यादा फायदा इंसान को हासिल हो सकता है, ठीक है। तो इन्नी कुंतु मिनस सॉलिहीन फस्तजबना लहू, बस हमने जवाब दिया उनको, यानी आई वी रिस्पोंडेड टू हिम, ठीक है, अल्लाह ताला अपने लिए जो है वो उमूमी तौर पर जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला एक से ज्यादा नहीं है, एक ही अल्लाह, अल्लाह ताला तो एक ही है। फस्तजबना लहू, बस हमने सुन ली उनकी, हमने उनको रिस्पोंड किया, हमने उनको जवाब दिया, यानी इग्नोर नहीं कर दिया हमने उनकी बात को। फस्तजबना लहू का मतलब कि हमने इग्नोर नहीं मार दिया उनको, ठीक है। वनज्जैनाहु मिनल गम, और निजात दे दी हमने उनको गम से, जिस गम के अंदर वो मुब्तला हो चुके थे अपनी एक गलती की वजह से। वकदालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरीके से हम निजात देते रहेंगे ईमान वालों को, मुमिनीन को, मानने वालों को, ठीक है। अब हर मानने वाला जो है वो तो आयत करीमा नहीं पढ़ता, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि हम जो है वो आयत करीमा पढ़ने वालों को जो है वो इसी तरीके से माफ करते रहेंगे और गुनाहों से वो मुसीबतों से निजात देते रहेंगे, ठीक है, बल्कि ईमान वालों का तस्करा किया, हर मानने वालों को जो है वो हम इसी तरीके से जुलुमात से, अंधेरों से, मुसीबतों से निजात देते रहेंगे, किसी तरीके से, किस तरीके से, एक तो ये कि तरीका क्या है, जो तरीका जो है वो यूनुस अलैहिस्सलाम, क्योंकि उन्हीं को जो है वो जन्नून कहा जाता है, ठीक है, उनके तरीके से जो हमसे रुजू करेगा, है? अपनी मुसीबत के ऊपर जो है वो माफिया मांगेगा और हमारी जो है वो तस्बीह बयान करेगा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया था, गलत उसी ने किया था, उसी की गलती की वजह से उसके ऊपर मुसीबत आई है, तो जो भी इस तरीके से एडमिट करेगा ना हमारे सामने अपनी गलती को और हमसे जो है वो माफी मांगेगा, तो हम उसको जो है ना फिर उसकी मुसीबत में से निजात देते रहेंगे। एक बात तो ये हो गई, क्या तरीका, यूनुस अलैहिस्सलाम वाला तरीका, ठीक, और दूसरा ये कि मुमिनीन कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ठीक है, क्योंकि मुमिनीन जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, मोमिनीन ऐसे ही होते हैं कि वो अल्लाह के सामने अपनी गलती को एडमिट करते हैं और फिर अल्लाह ताला से जो है ना वो यानी नाज़िम और शर्मिंदा होते हैं और मदद मांगते हैं, ठीक है। तो ईमान वालों का तो यही तरीका है जो कि यूनुस अलैहिस्सलाम वाला तरीका है, ठीक है। अब हमने क्या इसको बना लिया,
हमने कहा जी हमने जो है ना वो बस पढ़ना है, हमने ईमान वाला तो नहीं बनना, हमने ईमान वाले वालों की सिफात तो अपने अंदर पैदा नहीं करनी, लेकिन हमने आयत करीमा पढ़ना जरूर है, बहुत दफा लाखों मरतबा पढ़ना है। ठीक है, कोई 240 मरतबा पढ़ रहा होता है, कोई 420 मरतबा पढ़ रहा होता है, ठीक है ना, लेकिन ईमान वाला नहीं बनना मैंने। ठीक है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ईमान वालों को हम निजात देते रहेंगे। खुलासे तफसीर आगे फरमाते हैं कि और मछली वाल वजन नून, यानी नून जो है वो लफ्ज मछली के लिए इस्तेमाल होता है, तो मछली वाले पैगंबर के लिए, पैगंबर यानी यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से का तस्करा कीजिए, जब वो अपनी कौम से, जबकि वो ईमान ना लाई थी। अब ये सारी तफसील आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो वो अपने कौम से खफा होकर चल दिए थे और उनकी कौम पर से अजाब टलने के बाद भी खुद वापस ना आए, और इस सफर के लिए हमारे हुक्म का इंतजार नहीं किया। यानी वो बेसिकली चले तो गए थे कि जी अब इनके ऊपर अजाब आने वाला है, लेकिन जब अजाब अल्लाह ताला ने रोक लिया तो उस वक्त जो है ना फिर इनको वापस आ जाना चाहिए था। उस वक्त इन्होंने फैसला ये कर लिया कि मैं अभी वापस जाऊंगा ना तो गलत हो जाएगा, मैं चला जाता हूँ, कहीं और चला जाता हूँ। ये जो उनका फैसला था ना कि कौम में वापस जाने के बजाय वो आगे चले गए, इसके ऊपर इनके इनके ऊपर फिर अल्लाह ताला ने ये मामला नाजुक फरमाया। तो उन्होंने अपने इज्तिहाद से ये समझा कि हम इस चले जाने में उन पर कोई दारोगीर ना करेंगे, यानी ये नहीं कि वो अल्लाह ताला की कुदरत से भागना चाह रहे थे और वो नाउज बिल्ला ये समझना शुरू हो गए थे कि बस अब तो मैं निकल जाऊंगा अल्लाह की, जहां पे अल्लाह ताला का हुक्म चलता है मैं उस इलाके से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, बल्कि वो अपने अमल के बारे में ये ख्याल कर बैठे थे कि इसके ऊपर मेरी उससे पूछ गछ नहीं होगी। यानी चूंकि इस फरार को उन्होंने अपने इज्तिहाद से जायज समझा, इसलिए वही का इंतजार ना किया, लेकिन चूंकि उम्मीद वही तक वही का इंतजार अंबिया के लिए मुनासिब है और ये मुनासिब काम उनसे तर्क हो गया। ठीक है, यानी अंबिया का मामला क्या होता है कि वो अपना इज्तिहाद है ना, इज्तिहाद के मौजू के ऊपर हम बहुत तफसील से बात कर चुके हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम वाले वाकये के तहत। ठीक, कि इज्तिहाद बेसिकली जब इंसान के ऊपर ऊपर से हुक्म नहीं नाजिल हुआ होता है, कोई उसको शरीयत का हुक्म नहीं पता, अल्लाह का हुक्म नहीं पता, रसूल अलैहिस्सलाम का हुक्म नहीं पता किसी मामले के अंदर, तो उस सूरत में बंदा क्या करे। ठीक है ना, तो उस वक्त जो है ना उसको फिर इज्तिहाद करना होता है, यानी उसको अपनी राय इस्तेमाल करनी होती है कि कौन सा वाला अमल जो है वो अल्लाह की रजा वाला अमल होगा, अगर मैं उसे करूंगा तो अल्लाह की मुझे रजा मिल जाएगी। ठीक है ना, ये अपनी राय से जो फैसला करते हैं ना अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, ठीक है, अपनी राय से और अपने इल्म, सिर्फ राय का मतलब वो नहीं है कि गेस वर्क, गेस कर रहे हैं, नहीं, गेसिंग यहाँ पे नहीं होती, बल्कि अपनी राय इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि अपना जो इल्म है अल्लाह की रजा के बारे में, कि भाई अल्लाह की रजा किन किन चीजों के अंदर मिलती है ना, ठीक है, तो उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए जब कोई किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करता है ना ताकि उसको अल्लाह की रजा मिल जाए, ये इज्तिहाद होता है। ठीक है, तो उसने जो है वो ये सॉरी यूनुस अलैहि सलाम ने इज्तिहाद किया यहाँ पर और वही का इंतजार नहीं किया। नबी के लिए मुनासिब ये होता है कि इज्तिहाद जो है ना सिर्फ उस मौके पे जाके करे कि जबकि वही का इंतजार करने के बावजूद उनके ऊपर वही नाजिल नहीं हो, तब जो है ना वो इज्तिहाद कर सकते हैं। इन्होंने इंतजार नहीं किया बस। ठीक है, तो लिहाजा उनको ये इब्तिला पेश आया कि यानी इस आजमाइश के अंदर वो मुब्तला कर दिए गए कि रास्ते में उनको कोई दरिया मिला और वहां कश्ती में सवार हुए, कश्ती चलते चलते रुक गई, यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरा ये बिला इजाजत फरार नापसंद हुआ, इसकी वजह से ये कश्ती रुकी। यानी रुकी क्या मतलब कि बेसिकली समंदर में तूफान आ गया और ये कश्ती उस तूफान के अंदर घिर गई। ठीक ठीक है, अब आगे नहीं जा रही थी बल्कि बस वहीं पे फंस रही थी और ऐसा लगता था कि डूब जाएगी। कश्ती वालों से फरमाया कि मुझको दरिया में डाल दो, वो राजी ना हुए। गर्ज पूरे पर इत्तेफाक हुआ तब भी उन्हीं का नाम निकल आया, आखिर उनको दरिया में डाल दिया और खुदा के हुक्म से उनको एक मछली ने निगल लिया। अखरजहु इब्ने अबी हातिम अन इब्ने अब्बास कज़ा फित दुर्रिल मंसूर। बस उन्होंने अंधेरों में पुकारा कि एक अंधेरा मछली के पेट का, दूसरा दरिया के पानी का, दोनों गहरे अंधेरों जो बहुत से अंधेरों के कायम मुकाम, या तीसरा अंधेरा रात का भी, यानी डार्कनेस विद इन डार्कनेस विद इन डार्कनेस। एक तो मछली के पेट के अंदर किसी किस्म की कोई लाइट का गुजर ही नहीं हो सकता, तो पेट के अंदर जो डार्कनेस थी, फिर उसके बाद समंदर को जो पानी होता है वो गहराई में चले जाएं तो फिर सनलाइट है ना वो नीचे नहीं पहुंच सकती, और ये मछली जाहिर है इनको निगलने के बाद जो है वो बहुत गहराई में चली गई, तो अब वो उस जगह पे पहुंच गई। बाकायदा मछलियां अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई हैं जो कि ओशन की डेप्थ में होती हैं, उनकी अपनी टॉर्च लाइट होती है बाकायदा, राइट। मछलियों के जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने लाइट का निजाम किया हुआ है, अजीब, तो वहां पर बिल्कुल लाइट नहीं होती। तो ये दूसरी लाइट, ये दूसरी डार्कनेस थी, और फिर उसके बाद तीसरी डार्कनेस ये के अंधे अंधेरी रात थी, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर वो फंस गए। काला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमा फी दुर्रिल मंसूर, गर्ज इन तारीकियों में उन्होंने दुआ करी। ये तारीकियों की इतनी तारीफ, इतनी तफसील क्यों बयान करी, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी आयत के अंदर फरमाया फनादा फिल ज़ुलुमाती, है ना, तारीकियों से उन्होंने जो है वो पुकारा, तो इस वजह से तफसील बता दी कि तारीखियों से कौन सी तारीखियां मुराद है। तो गर्ज इन तारीखियों में उन्होंने दुआ की कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं, ये तौहीद है, आप सब नकायस से पाक हैं, ये तंजीह है, ठीक है, जिसको हम तस्बीह भी कहते हैं, तंजीह यानी अल्लाह ताला की नुजहत बयान कर रहे हैं, पाकिजगी बयान कर रहे हैं, ठीक है। मैं बेशक कसूरवार हूँ, ये इस्तिग़फ़ार है, जिससे मकसूद ये है कि मेरा कसूर मुआफ करके इस शिद्दत से आप मुझे निजात दे दीजिए। इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, जो फरमाया ना, तो ये वो वाला नहीं कहते ना, जबकि हमें नेक बनना नहीं होता लेकिन कोई हमें नसीहत कर रहा होता है, गुनाह से बचने की नसीहत कर रहा होता है, लेकिन हमने जो है ना वो अमल कोई नहीं करना होता उसकी नसीहत के ऊपर, तो हम जो है ना वो फिर ये कहना शुरू करते, हाँ हाँ मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मैं सबसे ज्यादा बुरा हूं, राइट। लेकिन ये जो हम कह रहे होते हैं ना मैं सबसे ज्यादा बुरा हूं, ये सिर्फ लफाजी होती है, ये सिर्फ लफाजी होती है, इसकी हकीकत कोई नहीं होती। मैं सबसे बुरा हूं, हाँ मैं ही तो सबसे बुरा हूं, कुछ लोग जो है मैं ही तो सबसे बुरा हूं बोल देते हैं, ठीक है ना, तो फिर जुबानी तौर पर भी इजहार हो जाता है कि करना वरना कुछ नहीं है, बस खाली जो है ना वो ये यानी चिड़ में आकर के बस जो है ना वो बोल रहा है कि मैं ही तो सबसे बुरा हूँ और तो कोई बुरा है ही नहीं, है ना। तो अक्सर मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं इस तरह की हरकत, ठीक है ना, और कुछ लोग जो है वो जरा और तमीजदार होने के बाद है ना फिर ही का लफ्ज निकाल देते हैं, बल्कि कहते हैं मैं सबसे बुरा हूँ, मैं बड़ा बड़े अदब से लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं होता इस तरह बोलने का, क्योंकि अपनी गलती मान नहीं रहे होते, अपनी गलती मान नहीं रहे होते, दिल में वो कोई नादिम पशिमान नहीं हो रहे होते, बल्कि सिर्फ बस जिसको कहते हैं ना जाहिरी तौर पर वो मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा हूं, और असल में दिल में क्या होता है, बुरा तो दूसरा है। मुसीबत भी जो आई हुई है ना, जिस मुसीबत की वजह से मुझे आपको सर पर बिठाना पड़ रहा है, आपसे जो है वो मशवरा करना पड़ रहा है, ठीक है, मुसीबत ना होती तो मैं कभी भी आपके पास नहीं आता, है ना शेख साहब, मौली साहब, अगर मेरे ऊपर एक मुसीबत ना आती मैं तो आपको मुंह भी ना लगाता, नहीं मैं तो आपके पास कभी फटकता भी नहीं, ये तो मजबूरन मुझे आना पड़ रहा है आपके पास। अब आप जो है ना मुझे जो बोल रहे हैं ना कि भाई गुनाहों से तौबा कर लो और अपने अल्लाह के साथ अपने मामलात को ठीक कर लो, नबी अलैहिस्सलाम के साथ मामले को ठीक कर लो, अपने मशायख के साथ मामले को ठीक कर लो ताकि मुसीबत तुम्हारे पास उतरे, तो उस वक्त जो है ना फिर बेसिकली जो है ना वो अपने सर पर से शेख साहब को उतारने के लिए, ताकि शेख साहब टलें, ये कह देते हैं मैं सबसे बुरा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अंदर से तो वो मामला नहीं होता, वो तो पता चल जाता है ना कि अंदर से वाकई अपने आप को बुरा समझ रहा है, गलत समझ रहा है, या वही कि बीवी की वजह से सब कुछ हुआ है मेरे साथ, या बीवी समझ रही होती है शौहर की वजह से सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। तो शेख साहब के पास भी जो आए होते हैं ना, असल में फिर क्यों आए होते हैं शेख साहब के पास, वो इसलिए आए होते हैं कि किसी तरीके से ये ना जो है ना मेरी बीवी की इसलाह कर दें, या बेगम साहब आई होती हैं इस वजह से कि शेख साहब किसी तरीके से मेरे शौहर की इसलाह कर दें, ठीक है ना। शौहर आते हैं कि शेख साहब अपनी बेगम से बात करके मेरी बीवी की इसलाह करवा दें ताकि मुसीबत खत्म हो जाए। तो ऐसे लोग जो बोल रहे होते हैं ना इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, इस इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन की कोई हकीकत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती इसकी, ठीक है ना। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जुबान से नहीं बोला था खाली, बल्कि दिल से कहा था, और अल्लाह ताला दिलों का हाल जानते हैं, ठीक है। तो नफ्स और शैतान जो है ना बड़ा मकरो फरेब करते हैं हमारे साथ, है ना, ऊपर ऊपर से बड़ा, तुम तो बड़े यूनुस अलैहिस्सलाम वाली दुआ पढ़ रहे हो, तुम तो अपने आप को गुनाहगार मान रहे हो, लेकिन ये धोखा होता है, हम असल में अपने आप को गलती गलती के ऊपर मान ही नहीं रहे होते, तो मुसीबत कहां से टलेगी फिर उसके बाद, ठीक है। इसी वजह से सारी जिंदगी मुसीबत में ही गिरे रहते, ठीक है। बस ये पढ़ करके फिर आप लोग मैसेजेस पढ़ते हैं कि मैं बेशक कसूरवार हूँ, ये इस्तिग़फ़ार है जिससे मकसूद ये है कि मेरा कसूर माफ करके इस शिद्दत से मुझे निजात दे दीजिए। सो हमने उनकी दुआ कबूल की और उनको इस घुटन से निजात दी, जिसका किस्सा सूरह साफ़ात में फनबज़नाहु फिल अरा'ई से लेके आखिर तक जो आयत है उसमें मज़कूर है, और हम इसी तरह और ईमान वालों को भी कर्ब और गम से निजात दिया करते हैं, जबकि चंदे गम में रखना मसलहत ना, चंदा मामू वाले गम में रखना, चंदे गम में रखना का मतलब कि यानी ये क्लासिकल उर्दू हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की, कि जबकि गम में रखना अगर मसलहत है तो फिर तो हम रखते हैं, वो कितनी आयतें करीमा पढ़ ले, है ना। हमारी मसलहत यही है कि भाई ये गम में ही ठीक है, अगर ये गम से निकला ना, इसने जो है ना इसका खमीर सही नहीं है, ये गम से निकल आया फिर इसने जो है ना वो ऐसा भागना है शैतान की तरफ कि पलट करके भी नहीं इसने पूछना। तो मसलहत भी अल्लाह की होती है गम में रखना, तो जो भी मसलहत है ये एक मसलहत है कि निकल गया तो फिर शैतान की तरफ भाग जाएगा। दूसरी मसलहत ये भी हो सकती है कि भाई गम में रह करके जो इसको दर्जात मिलेंगे ना सब्र करने के साथ, इसको जो दर्जात मिलेंगे वो बगैर गम के ये अमल कर नहीं सकता बंदा असल में, है ना, ये इतना अमल नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से अल्लाह उसको गम में रखते हैं, ठीक है। और वो गम भी जो होता है ना वो बड़ा मीठा मीठा सा गम होता है, वो कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह की मसलहत होती है गम में रखना, लेकिन उमूमी तौर पर उमूम अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला गम से निजात दे देते हैं, असल ये होती है हमारी सोच। जी चले एक और किसी ने लिखा है डायरेक्ट मैसेज के अंदर, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ऊपर एक और सवाल, कंट्रोलिंग पेरेंट्स टू डू थिंग्स दे डोंट वांट टू फॉर देयर बेटरमेंट, is that also termed as badtameezi? Compelling parents to do things they don't want to for their betterment, is that also termed as badtameezi? Nahi, it depends on how you are compelling them. Theek hai na, compelling ka matlab ek ye hota hai ki aap unko physical force karke, unko jo hai wo yani unke sath badtameezi se baat karke unko jo hai wo dawa pila rahe hain ya unko jo hai wo koi aur kaam karwa rahe hain, theek hai na, to ye to badtameezi hoga। लेकिन एक होता है कंपेलिंग का मतलब कि आप उनको जो है वो समझा बुझा करके और तमीज़ के दायरे में रह करके आप उनको जो है वो दवा खाने के ऊपर या बुरी ग़िज़ा छोड़ने के ऊपर जो है वो माइल करने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हाउ, यानी जिस अंदाज से आप कर रहे हैं, ठीक है। जो उनके आप बेसिकली पेरेंट्स जो है ना इस हद तक ही कर सकते हैं कि उनको समझा बुझा करके उनके नफे के की तरफ जो है वो मायल कर सकते हैं, चाहे जिस्मानी नफा हो, चाहे रूहानी नफा हो, चाहे नफसियाती नफा हो, है ना, कि भाई आप क्यों अपना अपने आप को हलकान कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप जाने भी दें छोड़ दें, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो उनको कंपेल कर सकते हैं, लेकिन आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना, फिजिकल फोर्स नहीं कर सकते आप उनको, जो है वो इमोशनली फोर्स नहीं कर सकते। बस अगर वो अपने नफा के रास्ते के ऊपर अब नहीं चलना चाहते, आपने उनको समझा लिया बुझा लिया, आपने उनको कुछ दलीलें भी दे दी, नहीं मान रहे, بس پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. آپ ان کی اصلاح کرنے کی اس سے زیادہ کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے. پھر وہ چونکہ بدتمیزی کے دائرے میں بھی داخل ہو جائے گا اور وہ تبدیل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی ایک عمر گزر چکی ہے اس انداز کے اوپر نا, جس انداز سے وہ اپنا معاملہ چلا رہے ہیں وہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں. وہ اب وہ اپنے اولاد کے کہنے کے اوپر وہ نہیں تبدیل ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اولاد کو عمومی طور پر ماں باپ جو ہیں وہ کسی قابل نہیں سمجھتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ میں سب سے برا ہوں, تو ان لوگوں کی اصلاح کیسے کیا جائے؟ بولنے سے بھی کہتے ہیں کہ اپنی بات اپنے پاس رکھو, اور کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو. جی, ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ آپ اکثر ویسے ایسی سوال کیا کرتے ہیں, لوگوں کو ٹھیک کیسے کیا جائے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پھر وہی جواب ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ان کے لیے دعا کریں, اور بس آپ ان کو ان کے گناہوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے جو ہے نا بس ان کو کسی طریقے سے سمجھا بجھا کر کے جو ہے نا وہ ڈاکٹروں سے جوڑیں, ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے, ڈاکٹروں سے جوڑیں گے, تو پھر سب سے پہلا کام ڈاکٹر یہی کریں گے کہ ان کو جو ہے نا ان کی غلطیوں کا احساس, ٹھیک ہے. ڈاکٹروں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں تاکہ سننے والے کو جو ہے پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا غلطی ہے, ٹھیک ہے. اب جب اس کو غلطی کا احساس ہو جائے گا تو پھر وہ اصلاح کی طرف مائل ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ خود ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی ایک حد تک کوشش کرتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جب وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں نا کہ اپنی بات اپنے پاس رکھو, اپنے آپ کو دیکھو, تو اس وقت پھر چھوڑ دیں, ٹھیک. اور دعا کریں ان کے لیے, ٹھیک ہے. چلیں, بہت دیر ہو گئی, ٹائم لے لیا آپ کے. اگلی کلاس سے وہ آخر ہوتا. الحمد للہ, السلام علیکم.